आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव युगर्षि वेदोमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित भाव संवेदनाओं की गंगोत्री।
जी बिल्कुल। और ये पुस्तक 1988 से 90 के बीच लिखे गए उस महत्वपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है।
हाँ, वही क्रांतिधर्मी साहित्य जिसे पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान शरीर कहा था, मतलब उनके विचारों का प्रकाश जो हमेशा रहेगा।
बिल्कुल। और उन्होंने आग्रह भी किया था कि इसे, उनके इस ज्ञान शरीर को, जन जन तक पहुंचाया जाए।
तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इस पुस्तक के मूल संदेश को समझें, कि कैसे ये भाव संवेदनाएं व्यक्ति और समाज के रूपांतरण की, मतलब बदलाव की, कुंजी हैं।
सही कहा। ये पुस्तक इसी बात पर तो जोर देती है कि कैसे ये जो भाव संवेदना रूपी गंगोत्री है, जब वो सूख जाती है तो व्यक्ति एकदम निष्ठुर संवेदनहीन सा हो जाता है।
और ये आज के समय का एक बड़ा संकट है ना?
बहुत बड़ा संकट। तो पूज्य गुरुदेव ने कई दृष्टांतों से, उदाहरणों से, इसी भाव चेतना को जगाने और उसे सही दिशा में सृजन के कामों में लगाने की महत्ता बताई है।
तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पुस्तक की शुरुआत में वेदव्यास जी की एक गहरी पीड़ा, एक अंतर्व्यथा का वर्णन है।
हाँ, कि उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, पुराण लिखे, महाभारत, ब्रह्मसूत्र जैसी रचनाएं की।
इतना सब कुछ करने के बाद भी वो व्यथित हैं, अशांत हैं।
क्यों?
क्योंकि वो देख रहे थे कि मानव बुद्धि का परिमार्जन नहीं हुआ।
अहंकार नहीं गया लोगों का?
हाँ, अहंकार नहीं गया, और समाज में प्रेम की जगह मोह, स्वार्थ, ये सब हावी है।
और वहीं पर फिर देवर्षि नारद का परामर्श आता है। वो कहते हैं कि व्यास जी, केवल ये बौद्धिक प्रयास, ये शास्त्र रचना, ये काफी नहीं है।
अच्छा, तो फिर समाधान क्या है?
समाधान है भाव संवेदनाओं के जागरण में, मतलब वो जो आत्मा सोई हुई है उसे जगाने में।
आत्मा का जागरण भाव संवेदनाओं से?
जी।
और ये भाव देखिए सिर्फ कोमल नहीं होते हैं।
जी।
सत प्रवृत्तियों के लिए तो फूल जैसे हैं, पर दुष्प्रवृत्तियों के लिए वज्र जैसे कठोर भी। यानी संतुलन।
बिल्कुल। और इनका पहला प्रहार होता है अहंकार पर। जब अहंकार टूटता है तब मन और बुद्धि आत्मा के पीछे चलते हैं, उसके अनुगामी बनते हैं।
पुस्तक में इसके कई उदाहरण भी दिए हैं पूज्य गुरुदेव ने, जहां जागृत संवेदना ने जीवन ही बदल दिया। जैसे वो विश्वंभर मिश्र का चैतन्य महाप्रभु बनना।
हाँ हाँ, संत ईश्वरपुरी ने उनके सिर्फ पांडित्य को चुनौती दी थी। कहा कि भाई, ज्ञान को भाव और श्रद्धा से जोड़ो, तभी खोई हुई मनुष्यता वापस मिलेगी।
और चैतन्य ने इस बात को पकड़ा,
गहराई से समझा। और फिर देखिए, कुष्ठ रोगी की सेवा से लेकर संकीर्तन तक उन्होंने कितने लोगों में वो चेतना जगाई।
बिल्कुल। इसी तरह मीरा का उदाहरण भी है।
मीरा तो अद्भुत है। उन्होंने राजसी वैभव, सारी मर्यादाएं सब तोड़कर, वो सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं कह रही थी,
नहीं, वो पूरी नारी जाति की पीड़ा थी।
हाँ, समस्त नारी जाति की। उनकी करुणा ने उन्हें सक्रिय बनाया। या फिर दक्षिण की अंडाल को देखिए।
अंडाल, जिन्होंने विवाह नहीं किया।
जी, विवाह अस्वीकार कर दिया और अपनी भक्ति को जनसेवा से जोड़ा। उन्होंने ये स्थापित किया कि भक्त वही है जिसे हर इंसान का दर्द अपना दर्द लगे।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भाव संवेदना सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि सक्रिय होना है।
बिल्कुल, सक्रिय करुणा।
और शायद सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय परिवर्तन तो सम्राट अशोक का माना जाता है, कलिंग युद्ध के बाद।
ओह, वो कलिंग युद्ध की विभीषिका, और फिर वो एक वृद्ध बंदी के शब्द।
हाँ, क्या कहा था उन्होंने?
इसे वीरता नहीं, क्रूरता कहिए।
और उन शब्दों ने चंड अशोक को अंदर तक हिला दिया।
बिल्कुल। फिर आचार्य उपगुप्त से मार्गदर्शन मिला उन्हें,
और उन्होंने अपने भीतर दिव्य भावों को जगाया। करुणा, शांति, सादगी अपनाई और पूरा जीवन शांति और सद्भाव फैलाने में लगा दिया।
यहाँ तक कि अपने पुत्र, पुत्री महेंद्र और संगमित्रा को भी इसी काम के लिए भेज दिया। ये दिखाता है कि संकल्प अगर जाग जाए, वो संवेदना अगर छू जाए, तो कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो, बदल सकता है।
जीसस का जीवन भी तो इसी करुणा का उदाहरण है।
हाँ बिल्कुल। मछुआरों को संगठित करना, उस धनी युवक को कहना कि सब संपत्ति त्याग दो, जैकस जैसे क्रूर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, ये सब क्या है?
ये वही जागृत भाव संवेदना है।
जी, जिसे वो होली घोस्ट या पवित्र आत्मा का अवतरण कहते हैं। ये अंदर से बदल देती है इंसान को।
ये सारे उदाहरण तो महान विभूतियों के हैं, लेकिन क्या ये भाव संवेदना एक आम इंसान के जीवन में भी ऐसी क्रांति ला सकती है?
निश्चित रूप से। पूज्य गुरुदेव का संकेत इसी तरफ है। महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए।
हाँ, बापू का।
एक गरीब लड़की की वो फटी हुई धोती देखी उन्होंने और बस
उनका हृदय पिघल गया।
ऐसा द्रवित हुआ कि उन्होंने आजीवन सिर्फ एक लंगूटी पहनने का व्रत ले लिया। अब ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था,
नहीं, ये तो देश के करोड़ों गरीब लोगों के दर से जुड़ना था, एकात्मा होना था।
बिल्कुल, और इसी गहरी संवेदना ने उन्हें वो असीम शक्ति दी, वो बल दिया।
ये वाकई सोचने वाली बात है, कैसे एक छोटी सी घटना एक गहरी संवेदना जगाकर इतना बड़ा बदलाव ला सकती है।
और ठक्कर बापा का जीवन देखिए, एक हरिजन की पीड़ा देखी उन्होंने।
हाँ, वो इंजीनियर थे ना।
जी, अच्छी खासी इंजीनियरिंग की नौकरी, सुख सुविधा सब छोड़ दिया और उन्हीं की तरह रहकर, उन्हीं के बीच रहकर उनकी सेवा में जुट गए।
कमाल है।
उनकी वो जागी हुई संवेदना ने उन्हें वो दिव्य दृष्टि दी जिससे वो उस पीड़ा को देख सके, महसूस कर सके, जिसे समाज अनदेखा कर रहा था। वो तो उन दलितों में ही ईश्वर अपने नंद कुमार का दर्शन करते थे। तो पूज्य गुरुदेव इन सभी उदाहरणों से यही तो सिद्ध करते हैं कि भाई, ये भाव संवेदना ही मनुष्यता का मूल है, उसकी जड़ है, और इसके जागरण से ही व्यक्ति और समाज का सच्चा उत्थान संभव है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
सार यही है कि भाव संवेदनाओं की गंगोत्री हमें वो जड़ता, वो निष्ठुरता छोड़कर करुणा, सेवा और सक्रियता का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है।
और पूज्य गुरुदेव के अनुसार यही आत्मजागरण है।
हाँ, यही आत्मजागरण व्यक्ति को एक दिव्य जीवन जीने और इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाने में सक्षम बनाता है। ये उनके क्रांति धर्मी साहित्य का एक केंद्रीय सूत्र है।
तो यहाँ हमारे लिए सोचने का बिंदु ये है कि आज की जो ये जटिल परिस्थितियां हैं, ये भागदौड़ भरी दुनिया है, इसमें हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में इन गहरी मानवीय संवेदनाओं को कैसे पहचानें
और कैसे उन्हें पोषित करें, सींचें।
हाँ, कैसे पोषित करें ताकि एक सकारात्मक बदलाव आ सके। जैसा कि पूज्य गुरुदेव की ये पुस्तक इशारा करती है, शायद ये बदलाव किसी भी पल, किसी भी एक सच्ची अनुभूति से शुरू हो सकता है।